जयधवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 17
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रुतात्मने नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वच्छायानं नमो लोए सौवसाऊनं अनुभाग भागमित्तो विजत्तदोषस्स संभवो नत्ति संपणमिय जिननाहं संकममनुभाग गोयरं वोच्चम।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा इतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक यह भी जो बंधक अधिकार है, तो उसमें भी हम संक्रमण को देखते हुए पृष्ठ संख्या 137 पर आ गए। 137 अभी अपनी पद निक्षेप की चर्चा चल रही है, उसमें प्ररूपणा और स्वामित्व हमने देख लिया है, और स्वामित्व में हमने जघन्य के स्वामी का ओग से कथन देखा। अब आदेश से कथन देखेंगे। यहाँ जघन्य वृद्धि के स्वामी की बात चल रही, जघन्य संक्रमण के नहीं। जघन्य वृद्धि किसके होती है उसकी बात हमने देखी थी, तो मिथ्यात्व में जघन्य वृद्धि किसके होती हमने देखा था, सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त हत समुत्पत्ति से बढ़ाकर बंद करता है अनंत भाग अधिक, उसको जघन्य वृद्धि है। जितना बढ़ा है उतना ही घटाता है, वो जघन्य हानि है, और वृद्धि और हानि के पश्चात है वो अवस्था है। ये तो मिथ्यात्व में देखा था, आठ कषाय में भी ऐसा ही लेना। अनंत अनुबंधी में कुछ विशेषता थी, वृद्धि में तो ऐसा ही लेना है, हानि में विशेषता थी।
जघन्य वृद्धि तो
सूक्ष्म निगोद में ली थी ना, देखना फिर। एक सौ तीस पृष्ठ पर विसर्जना करने के बाद
नहीं, संयोजना करके दूसरे समय में तृत पाओगे जघन्य अनुपात का बंद कर।
दूसरे समय
जघन्य बंद करके,
मैंने गलत बोला, उत्कृष्ट के बारे में वो बात थी। यह विसर्जना के पहले समय में जो
जघन्य बंद करता है
संक्रमण है, दूसरे समय में जो होगा वो जघन्य वृद्धि है।
तत्प्रायोगिक
और हानि में लिया था, उसमें लिए हमने बहुत सारी बातें देखी थी, यानी संयुक्त होने पर अंतर मुहूर्त तक तो उसने उसका अनुभव बढ़ता गया, नया बांध रहा है ना, उसके बाद और अगर अंतर मुहूर्त तक करता रहता तो सूक्ष्म निगोद तक उसका अनुभव पहुंच जाता। उसके पहले उसने अनुभव कंठघात किया, और वो कौन सा वाला किया, तो अनंत भाग हानि वाला किया, उसके वहां जघन्य हानि होती है। हाँ, क्रोध संज्वलन में मिथ्यात्व के समान बताया था, वृद्धि में
ठीक और इतना ठीक,
और हानि में जो अंतिम अंतिम समय संक्रमण करने वाला जीव लिया था। मान माया और पुरुष वेद का ऐसा ही समझा, और लोभ संज्वलन में कौन है, तो अवली प्लस एक समय वाला जो है तब उसका, क्योंकि वो हानि होकर उस पॉइंट पर आया है, इसलिए वहां उसकी हानि हुई है। त्रिवेद में तो देखा था हमने कि अंतिम अनुभाग कांड क्षपणा करने वाले ये हमने देख लिया, अभी आदेश से देखेंगे। अपना विषय यहाँ से शुरू होता है 137 देखो, आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की जघन्य वृद्धि का स्वामी कौन है? जघन्य संक्रमण नहीं पूछा, जघन्य वृद्धि किसके होती है वो पास पूछी। जो अनंत भाग वृद्धि रूप से वृद्धि करता है ऐसा अन्यतर जीव जघन्य वृद्धि का स्वामी है, यानी जितनी था संक्रमण उससे अनंत भाग बढ़ाकर करने लगता है तो उसका वो स्वामी है। तथा जो अनंत भाग हानि रूप से हानि करता है ऐसा अन्यतर जीव जघन्य हानि का स्वामी है, यानी यहाँ तो वो बात नहीं है जो हमने ओघ में देखी थी। तथा इनमें से किसी एक स्थान में जघन्य अवस्थान का स्वामी है, जघन्य वृद्धि या जघन्य हानि के बाद होता है वो जघन्य अवस्थान है। अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओघ के समान है, अभी हमने देखा ना जघन्य वृद्धि कहाँ देखी थी, संयोजना के जो दूसरे समय में जो बंद किया उसका जब संक्रमण होगा तब, और हानि भी अभी हमने देख ली। सम्यक्त की जघन्य हानि का स्वामी कौन है? जिसके दर्शन मौखिक क्षपणा में एक समय अधिक एक आवली काल शेष है वो उसकी जघन्य हानि का स्वामी है, यानी कृतकृत्य वेदक का करते करते यहाँ आया है, आवली प्लस दो समय से आवली प्लस एक समय तक आया तो वहां जो हानि हुई है वो जघन्य हानि। इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नारकी सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच द्विक, सामान्य देव और सौधर्म कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए।
ये सामान्य तिर्यंच बताए तो वहां तो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त खुले ना,
किसकी बात चल रही है यहाँ पर?
जघन्य हानि और वृद्धि की,
सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति की चल रही है, सम्यक प्रकृति की जघन्य हानि देख रहे हैं हम, नारकियों में देख रहे हैं, जहाँ कृतकृत्य वेदक उत्पन्न होते हैं उनके बारे में ये कथन लागू होता है। और ऐसे ही अन्य मार्गणा बताई जहाँ कृतकृत्य वेदक वाले जीव हो सकते हैं, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच द्विक या सामान्य तिर्यंच, इसीलिए उनको यहाँ देख लिया। अब सहस्रार्थ इसलिए कहा क्योंकि वो सभी कथन सभी स्टेटमेंट्स लागू होते हैं, क्योंकि मिथ्या तो वगैरह में तो हमने अनंत भाग वृद्धि की बात की थी और वहाँ वृद्धि वाली बात नहीं होगी, इसलिए सहस्रार्थक यानी वहाँ कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा ये सहस्रार्थक वो शब्द नहीं लेना, अन्य कर्मों में जो बताया है वो वहाँ पर भी लागू होता है इसलिए। इसी प्रकार नीचे की 6 पृथ्वियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है उनमें सम्यक्त्व का हानि संक्रम नहीं होता, बाकी चीजें वहां भी लागू होगी, मिथ्या तो 12 कषाय 9 कषाय अनंत अनुबंधी की बात तो वहां भी लागू हो जाए। इसी प्रकार योनिनी तिर्यंच भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए, जैसे नीचे की पृथ्वियों में वैसा ही समझना। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, मनुष्यत्रिक में मिथ्यात्व और 8 कषायों की जघन्य वृद्धि का स्वामी कौन है? अभी मनुष्यों में पूछ रहे, नारकियों में बता चुके। जिसने सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याय से आकर अनंत भाग वृद्धि रूप वृद्धि की है, ऐसा अन्यतर 3 प्रकार का मनुष्य जघन्य वृद्धि का स्वामी है।
यह अनंत भाग वृद्धि होगी जो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त से आया है, उसकी अपेक्षा
भाग बढ़ना
नहीं, उसकी अपेक्षा अनंत भाग बढ़ सकता है।
हाँ, तभी तो लिखा नहीं, बढ़ेगा तो सही,
मनुष्य पर्याप्त है।
हाँ, मनुष्य में आया है, अनंत वा भाग बढ़ाकर बांधा है उसने। अनंत भाग हानि करने पर यही अन्यतर मनुष्य जघन्य हानि का स्वामी है, यानी वहां बांधता इतना ही नहीं उसकी हानि भी करता है। हाँ? सूक्ष्म में से आया हुआ जीव है,
क्योंकि मेरा भी कोई क्वेश्चन था, जो अनुभाग सूक्ष्म लब्धियां पर्याप्त का है वो बहुत कम है, और वहां से यहाँ पे आया है तो मनुष्य पर्याप्त आएगा तो इमीडिएटली बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी।
क्यों, स्थिति की बात आप फिर सोच?
नहीं, स्तुति के नहीं, मैं अनुभाग की अपेक्षा भी पंचेंद्रिय।
वहां से आते ही इतना अधिक से अधिक बांधे नहीं बांधेगा, यथा योग्य उसमें भी वेरिएशन होगी ना, अलग अलग वहां भी बंद हो सकता है। वहां से आने पर वृद्धि की भी अलग अलग वहां बातें बन सकती है, तो जो अनंत भाग वृद्धि रूप बांधता है उसी की बात है। हर जीव इतना ऐसा करेगा ऐसी बात नहीं है। यानी उसने अनंत भाग वृद्धि की और फिर उसने उसी की हानि की, तो मनुष्य में वृद्धि जघन्य हानि यहाँ पर घटित होती है। इनमें से किसी एक स्थल पर जघन्य अवस्थान का स्वामी है, सम्यक्व सम्यक मिथ्यात्व बराबर करना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओघ के समान है। सम्यक्व तो हमने एक समय तो में लिया था, समय अंतिम जब शुरू करता है तब किया था।
अनंतानुबंधी भी
अनंतानुबंधी तो हमने डिटेल देख के दिया। चार संज्वलन और नौ नौ कोशायन का भंग भी ओघ के समान है, क्योंकि संज्वलन में भी जो जघन्य होता है उसकी क्षपणा में, तो वो यहाँ मनुष्यों में भी घटित होगा। किंतु इतनी विशेषता है, जिसने सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याय से आकर अनंत भाग वृद्धि की है वह जघन्य वृद्धि का स्वामी है। अनंत वा भाग बढ़कर बांधता है तो शुरुआत में वो कम है अनुभाग, उसकी अपेक्षा बढ़कर बांधा उसने। मैंने चार संगलन और नौ नौ कोशाएं के बारे में भी ऐसा ही कहा कि उसका कौन बांधने वाला है, तो सूक्ष्म एकेंद्रिय से आकर जिसने वृद्धि की है उसको कहेंगे आप। मनुष्यनियों में पुरुष वेद का भंग छह नौ कोशाएं के समान, क्योंकि वो सातों का एक साथ वो संक्रमण होता है, क्षपणा होती है। आनत कल्प से लेकर नव ग्रह तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि सम्यक और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग सामान्य देवों के समान है। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि सम्यक का भंग सामान्य देवों के समान है, यानी वहां कृतकृत्य वेदक है ये बात बताने। अनंतानुबंधी चतुष्क के जघन्य हानि संक्रम का स्वामी कौन है? तो कहते अनंतानुबंधी चतुष्क की विसर्जना करने वाला जो अन्यतर जीव द्विचरम अनुभाग कांडक का घात कर देता है वह जघन्य हानि का स्वामी है, यानी अंतिम अनुभाग कांडक का पहला समय लेना। अन्यत्र तो हम संयोजना कराते थे
यहाँ पे,
और यहाँ तो सारे समय दृष्टि है, मिथ्या तो में जाने का सवाल नहीं है। तथा वही अनंतर समय में जघन्य अवस्थान का स्वामी है, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। यहाँ पर आदेश से विशेषार्थ पड़ेगी, आदेश से स्वामित्व को समझने के लिए इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दर्शन मुनि की क्षपणा का प्रारंभ मनुष्य त्रिक में ही होता है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य हानि और अवस्थान इन्हीं मार्गणाओं में घटित होते हैं। इसका अर्थ समझ में आया? सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा यहीं पर होती है मनुष्य शरीर में, तो उसका जगन्य कब है? जब उसके अंतिम कांडक में प्रवेश करता है तभी। हानि हुई ना, जगन्य हानि की बात है वहां पर। अन्यत्र तो कृतकृत्य वेदक तो है, परंतु ये सम्यक मिथ्यात्व का ये जगन्य हानि संभव नहीं है। गति संबंधी अन्य मार्गणाओं में नहीं, गति संबंधी अन्य में नहीं ऐसा कहा, अन्य मार्गणाओं में बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं कहा, क्योंकि जहाँ काय मार्गणा होगी तो त्रस में होता है, इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय में होता है, ऐसा कहीं नहीं होता। गति संबंधी अन्य मार्गणा में नहीं होता, नरक देव और त्रिवेंशों में नहीं होता। यद्यपि मनुष्य त्रिक में तो सम्यक्त्व की हानि और अवस्थान दोनों बन जाते हैं, परंतु गति संबंधी अन्य जिन मार्गणाओं में, देखो सम्यक्त्व की हानि तो वो अंतिम समय में बताया हमने, संक्रमण का अंतिम समय, परंतु जघन्य अवस्थान कब होगा?
हानि के पश्चात नहीं, अंतिम कांडव कहते हैं।
हाँ, वहां तो प्रति समय घात हो रहा है, वहां तो अवस्थान नहीं बन सकता, तो जब अंतिम कांडक में प्रवेश कर चुका
अवस्थान,
तो अंतिम कांडक में प्रवेश किया तभी जगह वहां उसकी हानि हुई और उसके बाद अवस्थान हुआ, उसको जघन्य अवस्थान, ये डिफरेंस है अवस्थान में और जघन्य हानि में। अन्यत्र जहां जघन्य हानि है उसी के बाद जघन्य अवस्थान बताया। सम्यक प्रकृति में प्रति समय हानि हो रही है, उसको उतना का उतना रहेगा ही नहीं, वो तो हानि ही होती चली जाएगी, इसलिए वहां अवस्थान कांडक के जब अंतिम कांडक हुआ था तब उसका अवस्थान लेना, अवस्थान में जघन्य तब लेना।
ये अनुभाग में भी ऐसे देखा ना कि एक इंद्रिय में से जो पंचेंद्रिय में आएगा उसका अनुभाग थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, एक साथ पंचेंद्रिय के समान नहीं हो जाएगा, ऐसे ही समझ लेना चाहिए ना।
अभी हर एक जीव में अलग अलग अपने अपने योग्य होगा, परंतु वहां से आते ही उसके एकदम उत्कृष्ट संकलित तो नहीं होगा। हाँ। रहे भी वो अपर्याप्त जीव, उत्कृष्ट संकलेश उत्कृष्ट बंध करने वाले तो पर्याप्त हो गए, और वहां से आते ही इतना डिफरेंस नहीं होगा। हमने देखा था ना, वृद्धि भी होती मैक्सिमम वो पर्याप्त उनकी होगी। यहाँ लिखा ना, अन्य गति संबंधी जिन मार्गणाओं में कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि जी उत्पन्न मरकर उत्पन्न होता है, उनमें इसकी केवल हानि ही बनती है, और जिन मार्गणाओं में कृतकृत्य वेदक वदक हुआ है, वेदक समय दृष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता, उसमें इसकी हानि भी नहीं बनती, शेष कथन स्पष्ट ही है। अब ये तो हो गया जघन्य और उत्कृष्ट के पद निक्षेप, अब उसमें अप्पा बहुअम, अब अल्प बहुत्व को कहते हैं। अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र सुगम है, यानी पद निक्षेप में ये तीसरा अनुयोग द्वार है। पहले हमने देखा था प्ररूपणा, दूसरा स्वामित्व और तीसरा अल्पभूत्व, इसमें तीन ही है। सवत्थोवा मिच्छत्तस्य उपकस्य हानि, ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट में अल्पभूत्व अलग लगाएंगे और जघन्य में अलग लगाएंगे, तो अल्पभूत्व किस में लगाएंगे? हानि में, वृद्धि में। अवस्थान तो उतना का उतना कहेंगे, सवत हुआ मिच्छत सौकस्य हानि, यहां भी ऊपर वो सूत्र का साइन नहीं किया फ्लावर, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि सबसे थोक है। हमने पहले देखा था जब उत्कृष्ट वृद्धि और हानि की बात की थी तो वहां बताया था कि हानि कम है वृद्धि ज्यादा है। यहाँ पर सूत्र में सर्व पद के ग्रहण करने से सवत्थोवा लिखा था ना, सबसे स्तोक है, मिथ्यात्व के अनुभाग संक्रम विषय उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान, इन तीन पदों का ग्रहण करना चाहिए, इन तीन में ही अल्पभूत्व चलेगा। उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्था, वो भी मिथ्यात्व के बारे में। उन सब में या उन सबसे उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है और वह उत्कृष्ट हानि उत्कृष्ट अनुभाग कांडक प्रमाण है। हमने स्वामित्व में भी इसको देखा था कि जो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अनुभाग कांडक है वहाँ पर उत्कृष्ट हानि होती है। और वृद्धि जहाँ संगी पंचेंद्री के योग्य चतुस्थान के ऊपर उसका था और फिर उसके बढ़ाकर बांधता है उसको अनुभाग को, तब उसकी बात बताई। वड्डी अवट्ठानम च विशेषाह्य, उससे उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक है। उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान स्वामी के समान होने से, यानी उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान स्वामी दोनों ही समान है। स्वामी के समान होने से नहीं, वो के उसको नहीं लगाना अपनी भाषा में, दोनों के स्वामी समान होने से तुल्य होकर भी, यानी वो जो वृद्धि है और उतना ही अवस्थान है, तुल्य होकर भी उत्कृष्ट हानि से विशेष अधिक है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, उससे ये विशेष अधिक है इसका निश्चय कैसे होता है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि बढ़े हुए अनुभाग का पूरी तरह से घात करने की शक्ति न होने से, जितना मैक्सिमम बड़ा है उतना एक ही कांडक में घात नहीं हो सकता, इसलिए उत्कृष्ट हानि से ये दोनों विशेष अधिक है इसका निश्चय होता है। और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि पहले अल्प बहुत्व की सिद्धि करने के लिए स्वामित्व सूत्र में कहे गए अर्थपद के अवलंबन करने से उक्त विषय के निश्चय की सिद्धि होती है। वहाँ भी लिखा है अल्प बहुत्व का ये साधक है कहकर लिखा था, आपको याद होगा। वहाँ जहाँ उत्कृष्ट वृद्धि का हमने स्वामी देखा था और हानि का स्वामी देखा था, निकाल वहीं पर लिखा था कि ये अल्प बहुत्व का साधक सूत्र है कहकर। मिथ्यात्व में उत्कृष्ट वृद्धि की बात कर रहे थे। हाँ देखो, ये 123 पर नहीं, आगे होगा 125 पर। यह लिखा है वहाँ नीचे से तीसरा सूत्र, यह वक्षमाण अल्प बहुत्व का साधक है, मिला 463 के ऊपर। और उसमें लिखा है 463 में, यह जो पहले उत्कृष्ट बंध वृद्धि से उत्कृष्ट अनुभाग कांडक विशेष की हीनता कही है, वह आगे कहे जाने वाले अल्प बहुत्व का साधक है। यानी इसी सूत्र के आधार से भी वो बात सिद्ध होती है। अभी हमने उसी को देखा ना कि पहले ये बता चुके थे, स्वामित्व सूत्र में बताया था, ये 125 पेज पर है। अब आगे का सूत्र पढ़िए। एवं 16 कषाय 9 कषायानाम, इसी प्रकार 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी जानना चाहिए। यह अर्पणा सूत्र सुगम है, क्योंकि विशेष के अभाव के आश्रय से यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। वहां भी हमने देखा था ना 139, अभी हम 125 पर देख के आए ना, जैसे मिथ्यात्व का देखा था वैसे 16 कषाय और 9 कषायों की बात बताई थी, यही बात यहाँ फिर दोबारा बता दी। अब सम्यक्त्व की बात करेंगे। सम्मत सम्मामिच्छत्तानं उपकस्या हानि अवट्ठानं च सरिसम, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि और अवस्थान सदृश है, वहां तो वृद्धि होती ही नहीं है, तो अल्पभूत किसमें लगाएंगे, हानि और अवस्थान में, तो वो दोनों समान है। और उत्कृष्ट हानि कब होती है?
अंतिम कांडक में पहले समय,
पहले पहले कांडक
उत्कृष्ट हानि, सॉरी
उत्कृष्ट हानि जगन्यान है, पहला अनुभव कांडक, जब दूसरे का पहला समय शुरू होता है तब
हानि होती है, अवस्थान भाव है,
और अवस्थान भी उतना ही है कहीं, क्योंकि उत्कृष्ट हानि के होने पर ही उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामित्व देखा जाता है। इस प्रकार ओह प्ररूपणा समाप्त हो। आदेश से अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। अनुभाग विभक्ति में उभ के आगे मात्रा बराबर करने, अनुभाग विभक्ति में आदेश से सब प्रकृतियों की अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान का जिस प्रकार अल्पभूतव कहा है, उसी प्रकार यहाँ पर भी उसका कथन करना चाहिए। यह उक्त कथन का तात्पर्य, ये उत्कृष्ट बंध और उसकी उत्कृष्ट हानि तो सभी गतियों में हो जाएगी। इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पभूतव समाप्त हुआ। अब 140 पृष्ठ पर आते हैं। जहन नियम। अब जघन्य अल्पभूत को कहते हैं। उत्कृष्ट अल्पभूत की समाप्ति के बाद अब जघन्य अल्पभूत को बतलाते हैं। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है। मिच्छत्तस्य जघन्यावड्ढी हानि अवठान संकमोच तुल्लो। हमने देखा था ना, हत समुत्पत्ति के ऊपर बढ़ाकर बांधता है और उतना ही घात करता है, तो बढ़ाने के बाद भी और घात के बाद भी अवस्थान उतना उतना रहेगा, तो तीनों ही समान है, क्योंकि ये तीनों सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी हत समुत्पत्तिक जघन्य अनुभाग के अनंतवे भाग में प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध यानी हत समुत्पत्तिक का जितना अनुभाग है जघन्य अनुभाग, उसके अनंतवे भाग प्रमाण बढ़ाकर बांधता है, उतना ही घटाता है, और बढ़ाया या घटाया उसके बाद उतना ही रहता है। एवं अठ कषायाणम। इसी प्रकार आठ कषायों के जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान अवस्थान संक्रम का अल्पभूतव जानना चाहिए। जिस प्रकार मिथ्यात्व के अभिन्न विषय वाले जघन्य वृद्धि, ये वृद्धि हुआ है, वृद्धि जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान समान है, उसी प्रकार इन कर्मों के भी जानना चाहिए, क्योंकि उनका भी स्वामित्व वही है, स्वामी वही है सूक्ष्म निगोद वाला। सम्मतस्य सवत्थो वा जघन्य हानि। सम्यक्त्व की जघन्य हानि सबसे सूक्ष्म है। सर्वत्र तो जघन्य हानि और अवस्थान इकट्ठा दिखा है, सम्यक प्रकृति में कुछ अलग है, क्योंकि इसका स्वामी कौन है?
अनुसमय।
वो तो आवली प्लस एक समय वाला जब बाकी है तब, और जघन्य अवस्थान कब है?
अंतिम,
जब अंतिम कांडक में प्रवेश कर चुका तब। द्विचरम का कांडक घात हुआ और चरम में एंटर किया तभी की बात है, इसलिए कहते हैं सम्यक की सम्मतस्य सवत्थो वा जघन्य हानि। सम्यक्त्व की जघन्य हानि सबसे स्तोक है, वृद्धि का तो सवाल ही नहीं है इसमें, हानि और अवस्थान में ही अल्पभूतव चलेगा, क्योंकि प्रति समय होने वाली अपवर्तना द्वारा घात को प्राप्त हुआ सम्यक्त्व का अनुभाग दर्शन मुख की क्षपणा में एक समय अधिक एक आवली काल के शेष रहने पर जघन्य पने को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसके सबसे स्तोक होने में विरोध नहीं पाया जाता है। यानी जब आवली में आवली और दो समय बाकी थे तो उसका अनुभाग जितना था
एक समय,
वो घटकर आवली प्लस एक समय पर पहुंचा, वहां पर जितने कट हो गए, घट हो गए उसके, वो उसका जघन्य हानि है उसके लिए, इसलिए उसके सबसे स्तोक होने में विरोध नहीं पाया जाता। जहन्यम अवठानम अनंत गुणम। अभी कहते उससे जगन्य अवस्थान अनंत गुना है। ये डिफरेंस समझ में है ना? क्यों? क्योंकि प्रत्येक समय अनुभाग घट रहा था,
अनंत विभाग,
तो वो कितना घटकर एकदम बहुत कम हुआ था, तो वहां जो कुछ घटना हुआ था वो तो जगन्य में जगन्य था, जगन्य हानि थी, परंतु अवस्थान तो तभी होते जब ये कांडक घात हो गए, तो ये बहुत पहले हो चुके थे, इसलिए उसकी बात करनी। उससे जगन्य अवस्थान अनंत गुना है, क्योंकि प्रति समय होने वाली अपवर्तना के प्रारंभ होने के पूर्व ही, क्योंकि जब कांडक रुक जाते तो बाद में प्रति समय अपवर्तना होती है, पूर्व ही अंतिम अनुभाग कांडक में इसका जघन्यपना उपलब्ध होता है। जब अंतिम अनुभाग कांडक शुरू हुआ, पहले समय में तो उसका अल्पतर हुआ और बाद में उसका यानी हानि हुई और बाद में उसकी अवस्थान हुआ। सम्मामिच्छत्त जहन्या हानि अवट्ठान संकमोच फिल्ण, परंतु सम्यक मिथ्या तो में तो वो प्रति समय वाली बात नहीं होती, वहां तो अनुभाग कांडक ही होते हैं, इसलिए कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य हानि और जगन्य अवस्थान संक्रम तुल्य है। क्योंकि दर्शन मुख के क्षपक जीव के द्विचरम अनुभाग कांडक प्रमाण हानि होकर जगन्यपने को प्राप्त हुए, इन दोनों में परस्पर समानता की सिद्धि होने में किसी प्रकार की भी प्रतिपत्ति नहीं है। यानी दोनों समान है। कौन दोनों?
जगन्य
हानि और जगन्य अवस्था। अब कहते हैं अनंतानुबंधिनम सौवत्थोवा जगन्या वड्डी, अनंतानुबंधियों की जगन्य वृद्धि सबसे स्तोक है, क्योंकि पहले समय जितना बंधा था उससे दूसरे समय में जितना बढ़ाकर बांधा है उसी का उतना आवली के बाद बढ़ाकर संक्रमण होगा। क्योंकि तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम से संयुक्त होने के दूसरे समय में हुआ नवक बंध वृद्धि रूप से यहाँ पर विवक्षित है। तत्प्रायोग्य शब्द लिख दिया तो वहाँ मिनिमम पॉसिबल जो बंध होगा उसकी अपेक्षा लेना है और फिर उसको बढ़ाकर बांधा दूसरे समय में। जघन्य हानि अवट्ठान संकमोच अनंत गुण, उससे जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान अनंत गुणे हैं। हमने अभी भी देखा था अनंत अनुबंधी की जघन्य हानि कब होगी, तो पहले समय में जितना बांधा दूसरे समय में तीसरे समय में चौथे समय में वो बढ़ाकर बांध रहा है, अंतर्मूर्त तक तो बढ़ाकर बांधा, फिर भी वहां का अनुभाग सूक्ष्म एकेंद्रियों के हत समुत्पत्ति से अनंत विभाग
है, वहाँ पे कांडक घात होता
और अंतर्मूर्त तक बांधता तो सूक्ष्म एकेंद्रिय के समान हो जाता, परंतु वो बढ़ते हुए
कांडक घात
वहीं पर उसका कांडक घात होता है और अनंत वहाँ भाग कम हो जाता है उसका, तो वहां पर उसकी जगन्य हानि और जगन्य अवस्थान है। परंतु जो पहले और दूसरे समय में जो डिफरेंस था उससे तो यहाँ अनंत गुना बढ़ गया है, क्योंकि एकांत वृद्धि में अनंत गुना बढ़ाया था उसने। क्योंकि संयुक्त होने के बाद अंतर्मूर्त काल तक एकांतानुवृद्धि रूप से जो अनुभाग की वृद्धि होती है उसमें सबसे स्तोक अनुभाग कांडक घात के होने पर जगन्य हानि और अवस्थान का स्वामित्व देखा जाता है। हमने देखा था अनंत एकांतानुवृद्धि रूप से वृद्धि हो गई है और सूक्ष्म एकेंद्रीय के समान अनुभाग होने के पहले पहले उसका अनुभाग कांडक घात हुआ। चतुसंजरण पुरुष वेदानं सौवत्थोवा जघन्या हानि, चार संज्वलन और पुरुष वेद की जघन्य हानि सबसे स्तोक है। क्योंकि तीन संज्वलन और पुरुष वेद का जघन्य स्वामित्व अपने अपने बंध के अंतिम समय में हुए नवक बंध का अपने अपने संक्रम के अंतिम समय में संक्रमण करने वाले क्षपक जीव के होता है। यानी ये जो नया बंध किया उसने जो अंतिम समय में बांधा है, आवली बीत जाने के बाद उसका संक्रमण शुरू हुआ, उसका जो अंतिम समय है जब उसका जघन्य में जघन्य हुआ, उसकी हानि होकर वो जघन्य हुआ है, तो वहाँ उसकी जघन्य हानि पाई जाती है। और लोक संज्वलन का जघन्य स्वामित्व क्षपक जीव के सकशा अवस्था में एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने पर होता है, क्योंकि जब आवली प्रमाण शेष रहता है तो संक्रमण रुक जाता है, इसलिए एक समय अधिक आवली वाला गया। अतएव प्रकृत में इस जघन्य स्वामित्व का अवलंबन लिया गया है, यानी यहाँ हानि सबसे स्तोक है। उस जघन्यम अवठानम अनंत गुणा, उससे जघन्य अवस्थान अनंत गुणा है, यहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि ये जो अभी हम हानि देख रहे थे तो प्रति समय हानि देख रहे थे, और अवस्थान होगा जब कांडक होगा अंतिम, क्योंकि प्राचीन सत्कर्म संबंधी दो भेद किए ना, एक नया बंधने वाला और एक पूर्व में सत्ता में विद्यमान, इसलिए कहते प्राचीन सत्कर्म संबंधी अंतिम अनुभाग कांडक के समय प्राप्त होने वाले प्रकृत जघन्य अवस्थान विषयक स्वामित्व का यहाँ पर अवलंबन लिया गया है। जब अंतिम अनुभाग कांडक शुरू हो जाता है तो पहले समय में तो उसकी हानि होकर वो शुरू हुआ, दूसरे तीसरे समय में उतना का उतना रहेगा तो उसको कहेंगे वो
अवस्थान,
अवस्थान जघन्य अवस्थान। जघन्य वृद्धि अनंत गुणा, उससे जघन्य वृद्धि अनंत गुणी है, क्योंकि जघन्य अवस्थान संक्रम से अनंत गुणे सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी अनुभाग के आशय से इसका जघन्यपना प्राप्त होता है। ये जघन्य हुआ, जघन्यपना प्राप्त होता है, ख्याल में आए? सपना में उसके जो कांडक हो चुके थे
उससे,
वहाँ तो ये एकेंद्रिय के अनुभाग से भी अत्यंत हीन ऐसा अनुभाग वहाँ चल रहा था, उसका कांडक घात हो रहा था, उसकी अपेक्षा ये सूक्ष्म, क्योंकि वृद्धि कब होती है संज्वलनों की भी सूक्ष्म एकेंद्रिय में, वृद्धि में तो सबको वहाँ पर लगा, 16 कषाय 9 कषाय को वृद्धि में वहाँ पर ले गया, अनंतानुबंधी के जघन्य वृद्धि में केवल वो विसंयोजना का दूसरा समय लिया,
बाकी
संयोजना का दूसरा समय। जघन्य वड्डी अनंत गुणा, अठनो कसायणम जहन्य हानि अवठान संकमोच तुल्लोत्थोगो, आठ नौ कषायों के जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान संक्रम परस्पर तुल्य होकर सबसे स्तोक है, क्योंकि इन दोनों पदों का अपने अपने अंतिम अनुभाग कांडक के समय जघन्य स्वामित्व देखा जाता है। चार संज्वलन की अनंतानुबंधी की अलग बताई और यहाँ पर आठ की बात की। ऐसे कैसे लिए यहाँ पर नो कषाय, मैं कषाय की बात कर रही, मेरे मन में वो कषाय की बात, आठ कषाय आठ कषाय ऐसे मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आठ कषाय की बात तो मिथ्यात्व के समान है, यहाँ आठ नौ कषाय की बात हो रही है, इसलिए मैं फिर वापस पहले वाला देख रही थी। आठ नौ कषाय में किसको नहीं लिया?
पुरुषवेद
को छोड़कर, क्योंकि उसका नवक बंद होता है, बाकी का नहीं होता है। जघन्य वड्डी अनंत गुणा, उनसे जघन्य वृद्धि अनंत गुणी है, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी अनुभाग में अनंत भाग वृद्धि होने पर प्रकृत जघन्य स्वामित्व उपलब्ध होता है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों के जघन्य वृद्धि, ये वृद्धि हुई, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान संक्रम तुल्य है, क्योंकि हमने देखा था ना कोई भी जीव अनंत वा भाग बढ़ाकर बांधता है तो जघन्य वृद्धि,
अनंत वा भाग
उतना ही घटा है तो हानि
और
उतना ही अवस्थान। अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओघ के समान चाहिए, आ का ओ करना और समान दिख रहे समान करना चाहिए। इसी प्रकार हमने देखा था ना जगन्य वृद्धि हानि, उसकी बात देखी थी हमने वहां पर, कौन कम था और कौन ज्यादा था,
हानि कम थी और वृद्धि ज्यादा थी, बराबर हानि कम थी
वृद्धि कब हुई थी, पहले से दूसरे समय में जो हुआ था वो वृद्धि हुई थी और हानि ऊपर जाकर हुई थी अंतर्मुख के बाद, तो हानि में अनुभव ज्यादा होगा यानी उसकी हानि अधिक होगी कि वृद्धि अधिक होगी,
वृद्धि और ज्यादा होगी।
देखो जघन्य वृद्धि सबसे स्तोक है 141, पहले समय से दूसरे जितना बढ़ाकर बांधा है उसके अंतर्मूर्त के बाद अनुभाग कितना और बहुत ज्यादा बढ़ गया है और फिर उसमें से उसने हानि की थी, तो जघन्य हानि उससे अनंत गुणे है, ख्याल में ही ना बात, यहाँ पर भी ये जघन्य वृद्धि अनंत गुणे बताएंगे। हाँ ये तो हम अभी आदेश में देख रहे थे, अनंतानुबंधी का चतुष्क का भंग ओके समान है। इसी प्रकार सब नारकी सामान्य तीर्यंच पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक सामान्य देव और सहस्रार कल्प तक के देवों में, वो देव बराबर
ये अनंत गुण आने, तो हमने तो अनंत भाग वृद्धि और अनंत हानि देखी थी ना नारकियों में।
हाँ परंतु जो वृद्धि हुई है उससे हानि का प्रमाण अनंत गुणा है ये कहते हैं, नहीं समझा वृद्धि कब हुई, पहले समय में जितना था उसने जितना अनुभाग बढ़कर बांधा है उतना ही संक्रमण में वृद्धि हो गई, वो तो दूसरे समय में, अब अंतर्मूर्त बीत गया तो अनुभाग कितना हुआ अनंत गुना बढ़ गया, अब ये बढ़ा हुआ अनुभाग जो अनंत गुना बढ़ा है वो एक इंद्रिय से भी कम है फिर भी अनंत गुना है, जो पहले समय में था दूसरे समय में था उससे अनंत गुना बढ़ गया, प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ वहां पर पहुंचा है, अब उसमें से अनंत वा भाग हानि हो गए, तो वहां जितनी हानि हुई है और ये पहले दूसरे समय में जितना डिफरेंस हुआ है वो हानि अनंत गुनी है उससे,
तो वृद्धि कम है हानि ज्यादा है।
हाँ यही तो बता रहे थे ना, पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त लास्ट लाइन 142 पर और मनुष्य अपर्याप्तकों में अनुभाग विभक्ति के समान बन गए।
तो यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है कि का अवस्थान कोई भी एक जगह ले सकते हैं?
हाँ
जगन्य अवस्थान कोई भी एक जगह ले सकते हैं, इनमें से किसी एक स्थान में जगन्य अवस्थान
एक कोई तो बोलो अरविंद भाई कुछ बोल रहे।
हाँ क्योंकि जघन्य अवस्थान
नारकियों में,
हाँ नारकियों में ये पेज नंबर 137 में देखो जघन्य अवस्थान किसी भी एक स्थान में ले सकते हैं।
हम अनंतानुबंधी की बात कर रहे हैं।
नहीं नहीं हम आदि नारकियों की बात कर,
नारकियों में अनंतानुबंधी की बात कर रहे हैं,
अभी तो मिथ्यात्व की बात हो रही थी ना,
मैंने समान का समान भी किया था, समान का समान भी किया था।
अच्छा मैं ये मिथ्यात्व की बात सोच रहा था इसीलिए मेरा कंफ्यूजन हो रहा था, ये पहली लाइन में मिथ्यात्व 12 कसार 9 कसार की,
हमने तो अनंतानुबंधी वो आ हुआ था मैंने बोला ओ करना और समान दिख रहा था वो समान करना,
सॉरी
और इसलिए वहाँ पर जघन्य वृद्धि से जघन्य हानि अनंत गुणी है उसी की बात चल रही है अनंतानुबंधी में, मिथ्यात्व में तो जितना बड़ा कर बांधता है उतना ही घटाता है, वो तो समान है तीनों समान है। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में अनुभाग विभक्ति के समान बन गए, वहां भी लेना कितना अनुभाग लेके आया है, कम अनुभाग से आया एक इंद्रियों से तो बड़ा कर बांधेगा और अधिक से आया तो हानि करेगा, मनुष्य त्रिक में ओग के समान भंग है, यानी वहाँ हानि ज्यादा है कि वृद्धि ज्यादा है, ऐसा अगर प्रश्न है तो समान होनी चाहिए क्या है पता नहीं। वृद्धि विभक्ति में हम देखना है, अनुभाग विभक्ति में वृद्धि विभक्ति, वृद्धि
वृद्धि तो एक
वृद्धि नहीं, पद पद निक्षेप चल रहा है ना अपना, पद निक्षेप आदेश में। तीर्यंचो में हमको पंचमी तीर्यंच अपर्याप्त को मैं देखना था, देखो तीर्यंचों की बात हम पढ़ेंगे पूरी 304। तीर्यंचों की देखते 22 प्रकृतियों की जघन्य वृद्धि किसके होती है, अनंत अनुबंधी को छोड़ा, समय समय निश्चित को छोड़ा, जघन्य अनुभाग की सत्ता वाले सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव के द्वारा अनंत भाग वृद्धि रूप बंद करने पर जघन्य वृद्धि होती, अनंत वा भाग बढ़ाकर बांधा उसी का घात करने पर जघन्य हानि होती है, और दोनों में एक जगह अवस्थान होता है। सम्यक तो प्रकृति और अनंतानुबंधी का भंग नारकियों के समान है, जो अभी अभी हमने अन्यत्र भी देखा था। पंचेंद्रिय तीर्यंच, पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तीर्यंच योनियों में 22 प्रकृतियों की जघन्य वृद्धि किसके होती है, तो जघन्य अनुभाग की सत्ता वाला, जैसे हमने मनुष्य त्रिक में भी अभी भी देखा था, सूक्ष्म एकेंद्रियों से आकर यहाँ जन्म लेकर, वहां लिखा है सूक्ष्म एकेंद्रियों में जन्म लेकर, केंद्रियों से आकर यहाँ जन्म लिया है उसने। जब अनंत भाग वृद्धि को लिए हुए अनुभाग का बंध करता है तो उसके जघन्य वृद्धि होती है, उसी का घात करने पर जघन्य हानि होती है, और दोनों में से एक जगह जघन्य अवस्थान होता है। सम्यक और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग तीर्यंचों के समान है, इतना विशेष है, पंचेंद्रिय तीर्यंच योनियों में सम्यक प्रकृति को छोड़ देना चाहिए। वो तो हमने उसकी भी चर्चा की थी, हम अभी अपर्याप्तों की बात हमको पढ़नी थी। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्तकों में 22 प्रकृतियों की वृद्धि आदि का स्वामीपना इसी प्रकार है, इसी प्रकार है ने वो सूक्ष्म केंद्रीय से आया हुआ जीव जो बढ़ाकर बांधेगा वो जघन्य वृद्धि, उसी की हानि करेगा तो जघन्य हानि। अनंतानुबंधी का भंग मिथ्यात्व के समान है, किसके लिए, पंचेंद्रिय अपर्याप्तों के लिए मिथ्यात्व के समान है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त को, अभी आते हैं अपने एक सौ तैंतालीस पर आ गए अभी। मनुष्य त्रिक में ओग के समान भंग है, इतनी विशेषता है, मनुष्यनियों में पुरुष वेद का भंग 6 नौकशायन के समान है, यानी उसके अंतिम अनुभाग कांडक शुरू होता है तब उसकी जघन्य हानि हो जाएगी। आनत कल्प से लेकर नव ग्रेविक तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओग के समान। अनंतानुबंधी में तो वो बात घटित होगी दूसरा समय और आगे, जो हानि वृद्धि होती है उसके बाद। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व 16 कषायन और 9 नौकषायन की जघन्य हानि और अवस्थान, ये दोनों पद समान है, और वो कब होगी, अनंतानुबंधी की विसर्जना करते समय इनकी हानि होगी, अन्यथा जितना का उतना रहेगा। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार अल्प बहुत्व के समाप्त होने पर पद निक्षेप समाप्त हुआ।
ये विसर्जना में होगी कि रेगुलर में होगी, जघन्य हानि,
जघन्य हानि
विसर्जना में तो
होगी ही नहीं,
हाँ नहीं, बंदोबस्त तो कम के बंदेगा
ना, कम होगा।
अच्छा स्थिति कम,
अनुभाव क्यों कम होगा? उसका कम होने का कोई कारण नहीं है,
कार्य विशेष से नहीं है,
कार्य विशेष से ही होगा कम। देखो यहाँ उसमें देखना पांचवे नंबर जहाँ पढ़ रहे थे ना, 305 पेज पर, आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 26 प्रकृतियों की जघन्य हानि किसके होती है?
अंतिम घटक का
अनंतानुबंधी चतुष्क का विसर्जन करने वाले जीव के द्वारा अंतिम अनुभाग कांडक का घात किए जाने पर जघन्य हानि होती है। उसी के अनंत समय में जघन्य अवस्थान होता है। 22 प्रकृतियों की बात है यहाँ पर। क्योंकि अनंतानुबंधी के नीचे विशेषता लिखी है, देखो चार लाइन नीचे इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी चतुष्क के द्विचरम अनुभाग कांडक का घात किए जाने पर उसकी जघन्य हानि होती है, और 22 प्रकृति में अंतिम कांडक का घात किए जाने पर। क्यों ऐसा डिफरेंस?
वहाँ पे तो संक्रमण रुक जाएगा।
हाँ
वहाँ पे तो अंतिम कांडक के बाद तो संक्रमण ही रुक जाएगा।
अनंतानुबंधी में अंतिम कांडक के बाद तो संक्रमण तो रुक ही जाता है, और यहाँ अन्य प्रकृतियों में अंतिम कांडक घात होने के बाद वहाँ संक्रमण तो चल रहा है, तो वहाँ उसका जघन्य हानि होती है
और अवस्थान भी वहाँ।
अन्य प्रकृतियों में तो द्विचरम से अंतिम में आ गया तब उसका जघन्य हो गया अनंत अनुबंधी का, और अन्य में अंतिम अनुभाग कांड का घात हो जाने के पश्चात
संक्रमण चालू रहता है
उसकी हानि हो जाएगी, जघन्य हानि, क्योंकि वहाँ तो संक्रमण तो चल ही रहा है ना, परंतु उसके बिना अनुभाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 33 सागर भले वो सर्वार सिद्धि में रहे तो भी, हमने देखा था ना पहले, उतना का उतना
कार्य विशेष के बिना। हाँ
आपका ऐसा था ना कि सर्वार सिद्धि वाले जीव है, वहां तो शुक्ल लेशा इतनी विशुद्धि है, समय दृष्टि है सारे, तो वहां तो मिथ्यात्व का वगैरह अनुभव घटना चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसे स्थिति तो हम देखते हैं हर समय एक एक कम ही हो रही है वहां पर, फिर भी अनुभाग का घटना नहीं होगा। अनुभाग का घटना तो क्रिया विशेष से ही होगा, तो वहां कौन सा कार्य हो सकता है जो अन्यत्र? विसंयोजना का ही एकमात्र कार्य होगा, क्योंकि अन्यत्र उपशम सम्यक के काल में होता है घटना, मिथ्या दृष्टि जो है नीचे वाले विसंयोजना के काल में होगा, अनंत दर्शनों की क्षपणा में होगा, अन्य भी कर्मों में उसका घटना होगा, परंतु ऐसा कार्य तो वहां नहीं होता है, इसलिए वहां अनुभाग का घटना किस काल में होगा? जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो रही है, अन्य प्रकृतियों का भी अनुभाग कांडक हो रहा है, अनंतानुबंधी का तो हो ही रहा है, उसकी तो सत्ता नष्ट होने वाली है, परंतु अन्य कर्मों का अनुभाग कांडक स्थिति कांडक सब होगी वहां पर, इसलिए वहां के जीवों के लिए मिथ्यात्व की हानि कब होगी अनुभाग की? जब वो विसंयोजना करेगा, तो पहले कांडक के समय इतनी हानि नहीं हुई, या पहले कांडक के समय जो हानि हुई उसका प्रमाण ज्यादा है, और वो हानि का प्रमाण घटते घटते अंतिम कांडक के बाद जो रह गया उसका अनुभाग मिथ्यात्वादी अन्य प्रकृतियों का, वहां उसकी जघन्य में जघन्य हानि हुई, उसके बाद उतना ही अनुभाग थ्रूआउट रहेगा उसका।
इज दिस एप्लीकेबल इन चौथे गुणस्थान के पांचवे गुणस्थान में? यही एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि वहां पे हमने गुणश्रेणी निर्जरा निरंतर देखी है।
गुणश्रेणी निर्जरा है वो स्थिति की बात बताते हैं। हाँ। वहाँ मृदेशों की निर्जरा होती है।
नहीं, पर गुणश्रेणी निर्जरा में अनुभाग कांडक घात भी होते रहते हैं।
गुणश्रेणी निर्जरा में अनुभाग कांडक घात नहीं होते,
नहीं होते,
नहीं ना ही स्थिति कांडक घात होते हैं, मात्र अपकर्षण के द्वारा गुणश्रेणी की रचना होती है। कांडक घात होना अलग बात है, और सामान्य अपकर्षण के द्वारा गुणश्रेणी होना अलग बात है।
नहीं तो गुणश्रेणी की रचना कैसे होगी? अनुभाग स्थिति, अरे स्थिति
कांडक
घात,
कांडक की जरूरत क्या है? सामान्य से अपकर्षण होता है और नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो गुणश्रेणी रूप से हो जाती है।
तो अपकर्षण से ही गुणश्रेणी रूप प्राप्त हो जाती है। अच्छा, मैं इसे समझ रहा था
उतने बने रहेंगे और नीचे नीचे के एक एक निषेगल रहा है, और जब कोई क्रिया विशेष होता है तभी कांडक धातु होगे, करण परिणाम जहां जहां होंगे वहां कांडक धातु भी होगी। कांडक धातु कब होते हैं? अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण परिणामों में होते हैं, जब क्षपणा होती है, जब कुछ विसंयोजना होती है, जो विशेष कार्य होता है तब करेंगे। अभी अपना पद निक्षेप समाप्त हुआ, अब यहां से वृद्धि अनुयोग द्वार शुरू हो जाएगा, वृद्धि अधिकार शुरू होगा, अनुयोग तो उसमें तीन पड़ेंगे। वड्डीय तिन्नी अनुयोग दाराणी समुकीर्तना सामित्त अप्पा बहुवंच, इसमें भी तीन है, जैसे पद निक्षेप में तीन थे। पहले तो भुजगार अवस्थित वगैरह उसकी बात की, तो उसमें विशेषता बताने के लिए भुजगार यानी बढ़ना, तो वहां कहते हैं वृद्धि जो है, वृद्धि होती है, हानि होती है, वो उत्कृष्ट भी हो सकती है, जघन्य भी हो सकती है, वो हो गया पद निक्षेप। अब यहाँ वृद्धि में क्या कहेंगे, वो जो वृद्धि हुई है उसमें कितने प्रकार की वृद्धि हो सकती है, जैसे छह प्रकार की वृद्धि हानि जो हो सकती है, तो यहाँ उसको बताएंगे। यहाँ अनुभाग का प्रकरण है, इसलिए अनंत गुणा तक चले जाए, स्थिति में इतना नहीं होता है, वहां तो चार प्रकार की हानि वृद्धि होती है, और वो भी यथा योग्य, जहां होती है वहीं पर होती है, सर्वत्र नहीं होती। अब यहाँ पढ़ेंगे हम, वृद्धि में तीन अनुयोग द्वार होते हैं, समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व। पद निक्षेप विशेष को वृद्धि कहते हैं, और वहां पद निक्षेप में कहा था कि भुजगार विशेष को पद निक्षेप कहते हैं, है ना, यानी उसमें और स्पेसिफिकेशन करेंगे। उसमें ये तीन अनुयोग द्वार, ये तीन ही अनुयोग द्वार होते हैं, क्योंकि शेष अनुयोग द्वारों का इन्हीं में अंतर्भाव देखा जाता है। इस प्रकार सूचित किए गए समुत्कीर्तना आदि अनुयोग द्वारों में से सर्वप्रथम समुत्कीर्तना का कथन करते हैं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह सूत्र कहते हैं, समुत्कीर्तना। अब समुत्कीर्तना को कहते हैं, यह सूत्र सुगम है। मिच्छत्तस्य अत्थि सव्विहा वड्ढी छव्विहा हानि अवठानम च, मिथ्यात्व की छह प्रकार की वृद्धि, छह प्रकार की हानि और अवस्थान है। छव्विहा ने छह विधा, विधा ने प्रकार, छह प्रकार की वृद्धि भी होती है, अधिक बढ़ाकर बांधा है, छह प्रकार की हानि भी होती है, कांडक के द्वारा छह प्रकार की हानि हो सकती है, और कहते हैं अवस्थान भी होता है। शंका, छह वृद्धियां कौन है, यानी कौन सी है, उसका समाधान, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इन नामों वाली छह वृद्धियां हैं। इसी प्रकार छह हानियों का भी कथन करना चाहिए, वहां कैसे कहेंगे, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि। जहां गुणा हानि कहते ना, तो गुणा हानि यानी उसके उतने भाग प्रमाण रह जाता है और बाकी का घात, यानी अनंत बहुभाग का घात होकर अनंत वा भाग शेष बचेगा, तो कहेंगे अनंत गुणा हानि हो गई। और अनंत गुणा हानि में, अनंत वे भाग हानि में अनंत वा भाग कम हो जाना,
अनंत बहुभाग रह
जाना, बहुभाग रह जाना, उसको कहेंगे अनंत भाग हाँ, अनंत वा भाग उसमें से घटाना, और अनंत गुणा में अनंत से भाग देना उसको, और जो शेष रहेगा उतना वहां रहेगा। जैसे हम चौसर का कहेंगे, चार गुणा हानि कहेंगे तो क्या होगा, चार गुणा हानि यानी क्या हुआ,
48 जाएगा,
चौसठ को चार से भाग देंगे,
सोलह रहेगा,
सोलह बच जाएगा, और चौथा भाग हानि कहेंगे तो
16 जाएगा और 48 बाकी
चौथा भाग 16 है, 16 माइनस करेंगे
48 बाकी
48 बाकी है, इन्हें चौथा भाग हानि कहेंगे तो 48 रहेंगे, चौथा भाग 16 निकल जाएंगे और चार गुना हानि में
16 बाकी रहेगा,
चौथा भाग बाकी रहेगा, चार गुना हानि में चौथा भाग बाकी रहेगा, यानी 16 शेष रहेंगे, 48 निकल जाएंगे। ये डिफरेंस है दोनों में। अनंत भाग हानि में अनंत वह भाग चला जाता है, अनंत बहुभाग रहता है, और अनंत गुणा हानि में अनंत बहुभाग चला जाता है, अनंत वह भाग शेष रहता है। वृद्धि में उल्टा, उसमें ऐड कर देना। इसी प्रकार छह हानियों का भी कथन करना चाहिए। उनमें से छह वृद्धियों की प्ररूपणा जिस प्रकार अनुभाग विभक्ति में की है, उसी प्रकार सबकी सब यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। यानी ये समुत्कीर्तना में तो बस होती है इतना कहना, वही समुत्कीर्तना होती है। यहाँ पर वही बताई कि ये छह प्रकार की वृद्धि, छह प्रकार की हानि और अवस्थान है, उसमें और कुछ अलग से समुत्कीर्तना उन्होंने नहीं किए। अब हानियों का कथन करने पर सबसे उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाले जीव के द्वारा अंतिम उर्वंक का घात करने पर प्रथम अनंत भाग हानि रूप भेद होता है। वृद्धि में तो छह वृद्धि बताई, अब हानि में वहां तो बंद होता है, तो वैसे हानि में क्या लेंगे? पहली हानि कौन सी है? अनंत भाग हानि, यानी अनंत वा भाग कम होना। तो उसके लिए क्या कहा? जैसे हमने अनंत गुणा में उर्वंक वगैरह कहा था, तो हानि में भी उर्वंक आदि संख्या हो गई। उर्वंक किसको कहते याद है?
अनंत भाग।
हाँ, अनंत वा भाग वृद्धि या हानि होना, तो अनंत वे भाग के लिए ऊ कहा, उसको कहेंगे उर्वंक। यही कहते हैं सबसे उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाले जीव के द्वारा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट सबसे उत्कृष्ट अनुभाग था, उसके द्वारा अंतिम उर्वंक का घात करने पर प्रथम अनंत भाग हानि रूप भेद होता है।
ये अंतिम उर्वंक ऊ चार वाला के ऊ आठ वाला,
आठ के पहले वाला,
आठ के पहले वाला, तो वो तो बड़ा हो जाएगा ना। ऊ चार में जो ऊ है वो सबसे कम है, और वो उसमें पीछे बढ़ोतरी होती रहती है, क्योंकि उसमें मिलाते जाते वृद्धि में तो मिलाते जाते हैं।
हानि में सबसे पहली हानि कब से शुरू हो जाएगी? अनंत भाग हानि, अनंत भाग हानि, अनंत भाग हानि। हम उत्कृष्ट से शुरू कर रहे हैं, वहां हम जघन्य से शुरू करते थे पर्याय समाज में, वो फिर चार आया था।
हाँ।
हम हानि में अभी उल्टे क्रम से आ रहे हैं।
अच्छा,
उसमें भी उल्टा क्रम है, वो चार वाला ही होगा।
हाँ।
फिर भी वो ऊ कौन सा है?
अंतिम वो पता है इसके लिए।
हाँ, अंतिम हानि अनंत वाला है वहाँ पर।
हाँ।
और उससे पहले भी पहले ऊ वाला लेना, उसके साथ उसके अनंत वाला भाव कम कर देना। अब यहाँ अल्पभूत को कहाँ लगा रहे? कौन सी हानि ज्यादा है अधिक है, ये बात यहाँ नहीं हो रही है, वो पद निक्षेप में अभी हो चुकी। अब यहाँ तो नया अधिकार तो शुरू हुआ है, अभी वो अनंत वा भाग है कि अनंत गुणा है कि क्या है, उसकी बात चल रही। तो वो जिसको कहते हैं वो क्या है?
अनंत भाग हानि।
उसी के द्वारा तीसरी लाइन, अंतिम और द्विचरम उर्वंकों का घात करने पर दूसरा अनंत भाग हानि रूप भेद होता है। यानी दोबारा घात हुआ, वो भी दूसरा अनंत भाग हानि दो दूसरी बार हुई। इसी प्रकार इस विधि से नीचे कांडक प्रमाण उतरे हुए जीव के, एक कांडक प्रमाण क्या होता है?
सद्गुण।
कांडक किसको कहा? याद है आपको? नहीं, कौन से कांडक की बात है? सिद्धि कांडक के अनुभाग कांडक, हाँ देखो देखो ये किसको हमने देखा ना, उ और उ, दो बार उ कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? कांडक बार हुआ, कांडक की वैल्यू कितनी देखी थी?
अंगुल का असंख्या,
सुचंगुल का असंख्या था हमने देखा ना, सुचंगुल के असंख्यात रे भाग बार उर्वंक होगा तब जाके चतुरंक आएगा, उसको कहेंगे कांडक बार। कांडक का प्रमाण कितना है, यानी कितने बार वही की वही हानि होती चली जाएगी, तो सुचंगुल का असंख्यात होगा। तो कहते इस विधि से नीचे कांडक प्रमाण उतरे हुए जीव के पश्चातानुपूर्वी से प्रथम संख्यात भाग वृद्धि रूप स्थान के प्राप्त होने तक उतारना चाहिए। क्या कहते हैं ये? पश्चातानुपूर्वी से उसको संख्यात भाग हानि का प्रथम स्थान कहा, क्योंकि हानि की शुरुआत हम ऊपर से देख रहे हैं। वृद्धि में क्या करते थे? जघन्य से शुरुआत करते थे और फिर ऊपर बढ़ेंगे। हानि में भी क्रम ऐसा ही कहेंगे। ये संख्या कैसे लिया? प्रथम संख्यात भाग वृद्धि रूप स्थान के प्राप्त होने तक उतारना चाहिए। पश्चातानुपूर्वी कुछ लिखा है ना उसके, मैंने उल्टे क्रम से बताया उन्होंने। हाँ असंख्यात भाग हानि ही होगी उसके पश्चात। नहीं नहीं यहाँ क्या लिखा, इस प्रकार ऊपर ना, एवं अनेन विहानेन हिट्ठा ओयारेयवम जाव कंडे मित्त ओइन्नस पश्चानुपूवीये परम संख्येच भाग वड्डी स्थानम थी। संख्यात भाग वृद्धि रूप की बात चल रही, ये हानि रूप की बात नहीं है। नहीं 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 वो बराबर है। देखो देखो ये क्या कहते हैं, पश्चातानुपूर्वी से संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान आने तक। देखो मैं वृद्धि को देखते हुए जब हम देखा ना, उल्टे क्रम से आना है उसके साथ ऊपरी मनोभाग का घात करने पर असंख्यात भाग हानि का प्रारंभ होता है।
यह तो लास्ट वाला देखा ना हमने, उ उ जो लास्ट वाला है हाँ। वो देखा, आठ तो दूसरे वृद्धि में जाएगा,
वो तो लास्ट वाला जो हो गया हाँ, तो गुणा में होगा वो,
तो उ के पहले
संख्यात
क्या आएगा?
भाग वाली बात है, संख्यात भाग वृद्धि कब हुई थी?
ये उचार, उचार,
ये अनंत भाग वृद्धि हुई थी हाँ। फिर ये असंख्यात
भाग वृद्धि है, तू चार वो चार वो पांच वाला गया,
तो लास्ट वाला जो वो पांच वाला होगा उसकी बात है
हाँ।
अंत की ओर से हम पहला देख रहे हैं उसको, यानी वो पांच वो छह वाला है ना, वो वाला अंतिम संख्यात भाग वृद्धि वाला स्थान।
नहीं ये तो उ आठ वाला तो नेक्स्ट में जाएगा, तो इसके पहले सात आएगा,
सात वाला होगा
हाँ, सात आएगा
हाँ, तो वो गुणा वाला होगा,
तो सात संख्या गुणा
गुणा वाला होगा,
असंख्यात गुणा वाला हो जाएगा ना
हाँ,
वो तो।
नहीं ये कुछ अलग कहना चाहते हैं हम, जरा आगे बढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा शायद। यानी पहला संख्यात भाग वृद्धि का स्थान उल्टे क्रम से प्राप्त होता है, इतनी उन्होंने बताया। अपनी भाषा में हम समझेंगे, कांडक प्रमाण बार अनंत भाग हानि हुई, तो अब क्या होगा? असंख्यात भाग हानि हो जाएगी। ये बात क्लियर है ना? एक एक कांडक बार होता है, अनंत भागानी अनंत भागानी अनंत भागानी अनंत
असंख्यात भागानी होते हैं,
तो सुचंगुल के असंख्यात भाग बार ने कांडक प्रमाण बार होगी, तब जाके असंख्यात भाग हानि होगी एक बार। ये इसका अर्थ हम कुछ समझ नहीं रहे हैं, वो हम समझेंगे आगे चलकर। पुनः उसके साथ ऊपरी मनुभाग का घात करने पर असंख्यात भाग हानि का प्रारंभ होता है। यहाँ से लेकर पश्चात अनुपूर्वी से प्रथम संख्यात भाग बुद्धि के उत्पन्न होने तक असंख्यात भाग हानि के विषय रूप स्थान होते हैं। इससे नीचे घात किए जाने वाले अनुभाग के पश्चात अनुपूर्वी से उत्कृष्ट संख्यात के साधिक अर्धभाग प्रमाण संख्यात भाग बुद्धि के विकल्प परिहीन होने तक संख्यात भाग हानि का विषय होकर जाता है, यानी अभी संख्यात भाग हानि हो जाएगी। पहले असंख्यात भाग अनंत भाग हानि हुई, फिर असंख्यात भाग हानि हुई, अब उसके बाद संख्यात भाग हानि हो रही है। वहां पर प्रथम द्विगुणहीन स्थान उत्पन्न होता है,
आधा हो जाता है।
दो गुणाहीन है ने आधा हो जाता। दो गुणाहीन है ने आधा स्थान प्राप्त हुआ उसको। हानि होते 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 पहली बार द्विगुण हानि हो गई। यहाँ से लेकर जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण द्विगुण हानियां नीचे उतरने तक, यानी पहला जितना अनंत से शुरू किया था उसका आधा हुआ, आधे से आधा, आधे से आधा, आधे से आधा, ऐसे अर्धच्छेद अर्धच्छेद होना, आधा यानी अर्धच्छेद होना, या कितने बार हुआ तो जघन्य परिता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उतनी द्विगुण हानियां, यानी आधे का आधा, आधे का आधा, आधे का आया, उसको द्विगुण हानियां कहेंगे। नीचे उतर कर संख्यात गुण हानि का विषय होकर जाता है, यानी वहां तक वो संख्यात, क्योंकि पहली बार आधा हुआ तो उसको संख्यात गुणहानि का पहला स्थान कहा, फिर उसका आधा हुआ, उसका आधा हुआ, उसका आधा हुआ, उसका आधा हुआ, ये सबको क्या कहेंगे, संख्यात गुणहानि। अभी तक असंख्यात गुणहानि नहीं शुरू हुई। वहां से लेकर पश्चात अनुपूर्वी से संख्यात भाग वृद्धि के भेदों के असंख्यात बहुभागों को, संख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणवृद्धि के सब अध्वान को तथा उससे नीचे चार वृद्धियों के अध्वान को विषय करके अंतिम अष्टांक स्थान के प्राप्त होने तक असंख्यात गुणहानि का विषय होकर जाता है।
हाँ, ये बराबर असंख्यात गुणहानि वाला।
हाँ, असंख्यात गुणहानि। यहाँ पर अंतिम अष्टांक स्थान को छोड़कर शेष एक कम षट्स्थान प्रमाण, एक घट हुआ है षट्स्थान प्रमाण, कांडक घात करने वाले जीव के असंख्यात गुणहानि का अंतिम विकल्प होता है, यह उक्त कथन का भावार्थ है। पुनः अंतिम अष्टांक स्थान के साथ कांडक घात करने वाले के अनंत गुणहानि का प्रारंभ होता है। यहाँ से लेकर सबसे उत्कृष्ट अनुभाग कांडक के प्राप्त होने तक उसका घात करने वाले के अनंत गुणहानि का विषय होता है, यानी वो कांडक का प्रमाण कितना बड़ा है तो अनंत गुणहानि वाला घात करता है।
ये अनंत गुणहानि के इतने कांडक हो जाएंगे?
ये जो हम टेबल के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, वो बात यहाँ नहीं हो रही है,
क्योंकि हमने अनंत गुण वृद्धि तो एक ही बार देखी, उसे आठ में जाएगा तभी।
यहाँ से लेकर सबसे उत्कृष्ट अनुभाग कांडक के प्राप्त होने तक उसका घात करने वाले के अनंत गुणहानि का विषय होता है। हम इसका विशेषार्थ पढ़े और ज्यादा ख्याल में आएगा। इसी प्रकार अवस्थान संक्रम की संभावना का भी कथन करना चाहिए, क्योंकि वृद्धि और हानि रूप दोनों स्थानों पर सर्वत्र ही अवस्थान के होने का निषेध नहीं है। अवक्तव्य पद यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व के अनुभाग का आलम्बन हुआ है, आलम्बन लेकर म और ब चाहिए, उसकी उपलब्धि नहीं होती। देखो यहाँ पर अनुभाग की बात, वृद्धि की बात उन्होंने कहा कि अनुभाग के समान है, तो वृद्धि की बात देखकर फिर हम हानि की बात पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी कहाँ 305 पर थे, कहाँ पर थे?
305
वृद्धि विभक्ति 7 पर आ गई।
ये सत्संग बुद्धि की बात कही नहीं सकती है,
काल वगैरह बातें स्वामी को बताया, अंतर बताया। देखो यहाँ पर वृद्धि विभक्ति, छह प्रकार की वृद्धि होती है, इतना ही बताया वहाँ पर।
हाँ, कुछ ज्यादा बताया नहीं, आगे बताया होगा वृद्धि में।
काल वील उसकी बात है आगे। छह वृद्धि छह हानि और अवस्थान होता है, इतनी बात बताई थी। यहाँ हम जो पर्याय समास वाला टेबल देखते हैं ना, उसी की बात नहीं है यहाँ पर। अब कोई अनुभाग है विशिष्ट, उसमें घट हो रही है तो कितनी हो सकती है उसकी बात चल रही। वृद्धि में क्या था हमने देखा था, यहाँ से कोई वृद्धि हो रही है तो कितनी हो सकती है, अनंत वा भाग बढ़ सकता है,
असंख्यात वा भाग वृद्धि
हो सकती है। तो ऐसे हानि में लेना है, हानि में कितनी हानि होती है, अनंत वा भाग कट होना, असंख्यात वा भाग घट होना, यानी यहाँ से जो कांडक घात के द्वारा जो हानियाँ होती है वो एट ए टाइम कितनी हानि हो सकती है उसकी बात चल रही है। वो टेबल हमने अलग अलग जीवन की अपेक्षा देखे थे, परंतु यहाँ बीच वाले जो यहाँ तक के जो स्थान है वो सारे अनंत भाग हानि वाले स्थान है। और अधिक हानि होगी तो क्या कहेंगे उसको, असंख्यात भाग हानि। और ज़्यादा हानि होगी तो क्या कहेंगे, संख्यात वा भाग हानि, संख्यात गुना हानि, असंख्यात गुना हानि, अनंत गुना।
अच्छा, उल्टा लेना है।
हाँ, ये कितनी हानि हुई है तो अनंत गुना हानि हुई। हमने देखा था ना, ये वृद्धि में अनंत गुना वृद्धि हुई, फिर भी ये वृद्धि ज्यादा थी, उत्कृष्ट वृद्धि। अब कहते हैं ये भी अनंत गुना हानि हो गई। तो इसमें ये छह स्थान है अलग अलग, कोई जीव अनंत वा भाग ही कम करेगा, असंख्यात वा भाग कम करेगा या संख्यात वा भाग कम करेगा, तो उसके लिए यहाँ ये बात बता रहे। तो कहाँ तक ये अनंत वा भाग कम कर सकता है, कहाँ तक, यानी उत्कृष्ट अनुभाग से लेकर शुरुआत किया था, तो कहाँ तक नीचे तक आ सकते हैं, तो यहाँ उसके लिए उन्होंने बताया उल्टे क्रम से। उल्टे क्रम से ने उत्कृष्ट, ये यहाँ बंद है, उत्कृष्ट अनुभाग है। अब यहाँ नीचे आकर ऐसा कोई पॉइंट है कि वहां से ये संख्या भाग, कहा था ना संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम विकल्प होगा, यानी यहाँ से ऊपर चले जाएंगे तो इसके अपेक्षा संख्यात वा भाग बढ़ गया ऐसा कहेंगे हम। वहां तक जो नीचे आता है तो उसको अनंत भाग हानि कहेंगे, ये बात बताना। अभी विशेषांश पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी होगी शायद, और कल और फिर बढ़ेगी अपनी क्लैरिटी। हाँ, रात भर में अंदर जाएगा ना तो कुछ विशेषार्थ। दूसरे दिन सॉल्यूशन निकल आता है। यहाँ पर मिथ्यात्व के अनुभाग संक्रम में छह वृद्धियाँ, छह आनी और अवस्थान संक्रम कैसे संभव है, इसका उहापोह किया, उहापोह ने चर्चा की। उनमें से छह वृद्धियों का व्याख्यान अनुभाग विभक्ति के समय कर आए हैं, इसलिए यहाँ पर छह हानियों का ही मुख्य रूप से विशेष विचार किया है। यहाँ पर जो कुछ कहा गया है उसका सार यह है, जो उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म है, अभी मैंने यही बताया ना, ये उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म है, ये वाला सत्ता में मैक्सिमम अनुभाग पड़ा है, उसका यदि घात किया जाए तो ऊपर से घात करते हुए नीचे की ओर आया जाएगा। बस है, नीच का अनुभाग घात होगा तो कम अनुभाग हो जाएगा उसका। उसमें भी सबसे जघन्य अनुभाग कांडक अंतिम उर्वंक प्रमाण होता है। अब वो अनुभाग कांडक का प्रमाण कितना है, तो अंतिम उर्वंक वाला जो जितना है अनंत विभाग हानि वाला लास्ट में लास्ट, क्योंकि अंतिम उर्वंक क्यों कहा, क्योंकि जो भाग देने वाली संख्या वो तो सर्वत्र समान है, तो जिसको भाग देना है वो संख्या अगर बड़ी है तो भागाकार का प्रमाण भी कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं हम छेद सर्वत्र समान है, जहाँ ऊपर की संख्या बड़ी है
वहाँ पे अलग अलग
बात, वहाँ तो प्रमाण बड़ा होगा। हमने स्टार्ट किया है, हमने ऊपर से स्टार्ट किया है, तो उत्कृष्ट अनुभाग वाला घात होकर उसका अनंत वा भाग घट जाए। सर्वत्र अनंत के लिए हम जीव राशि वाला अनंत लेते हैं, उससे बड़ा अनुभाग कांडक, देखो फिर पढ़ती हूँ इसको पहले लाइन इसके, उसमें भी सबसे जघन्य अनुभाग कांडक अंतिम उर्वंक प्रमाण होता है। ये छोटे में छोटा अनुभाग कांडक यदि यहाँ किया जाए उत्कृष्ट सत्कर्म के साथ तो अंतिम उर्वंक के समान होता है, इतनी बात बताई। उससे बड़ा अनुभाग कांडक चरम और द्विचरम उर्वंक प्रमाण होगा, उससे बड़ा है उससे थोड़ा बड़ा, ये कितने प्रमाण हो गया,
ये अंतिम उर्वंक,
अंतिम उर्वंक के प्रमाण हुआ। अनंतवा भाग है, अनंतवा भाग है तो उर्वंक प्रमाण होता है, हर उर्वंक की वैल्यू भी अलग अलग होगी, तो ये अंतिम उर्वंक प्रमाण हो गया। उससे थोड़ा बड़ा होगा तो
चरम और द्विचरम उर्वंक,
चरम द्विचरम उर्वंक वाला होगा, तो उससे बड़ा अनुभाग कांडक चरम और द्विचरम उर्वंक प्रमाण होगा। ये बात ख्याल में आई ना, उल्टे क्रम से अभी हम आ रहे हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक उर्वंक स्थान के द्वारा अनुभाग कांडक का प्रमाण बढ़ाते हुए जाएंगे, बढ़ाते हुए अनुभाग कांडक है ना, उतने अनुभाग का घात करने वाला है। अंतिम वाला जो वो अंतिम वो प्रमाण था, अब नीचे की ओर आते हैं तो नीचे के ऊ की तरफ आएंगे हम, यानी बड़ा कांडक बड़ा है तो घात कर घात ज्यादा होगा और शेष बचा हुआ कम बचेगा। यहाँ तो अनंतवा भाग घात हो रहा है, यहाँ भी अनंतवा भाग अनंतवा भाग अनंतवा भाग, जहाँ घात बढ़ेगा तो कहेंगे हम असंख्यातवा भाग घट गया, जितना बड़ा कांडक उतना घात ज्यादा। तो कहते इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक उर्वंक स्थान के द्वारा अनुभाग कांडक का प्रमाण बढ़ाते हुए, अनुभाग कांडक बड़ा हो रहा है जब तक कांडक प्रमाण अर्थात आवली के असंख्यात भाग प्रमाण उर्वंक स्थान नीचे उतरकर, यानी उर्वंक कितने चले जाएंगे, आवली के असंख्यात भाग, यहाँ सूचंगुल के असंख्यात नहीं कहा है, असंख्यात भाग वृद्धि स्थान नहीं मिलता तब तक अनंत भाग हानि ही होती रहती है। यहाँ हानि का प्रकरण है, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर गए हैं और यही पश्चातानुपूर्वी है।
यह कांडक का प्रमाण ये आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है, ऐसे बता रहे क्योंकि एक कांडक का प्रमाण है कि इतने कांडक होते हैं अवलिक असंख्यात विभाग प्रमाण। हाँ,
यहाँ कांडक का प्रमाण ये बताया,
एक कांडक का प्रमाण कि इतना अवलिक असंख्यात विभाग प्रमाण कांडक होते हैं।
पूर्वंक स्थान,
हाँ तो उर्वंक स्थान तो एक कांडक हो गया।
उर्वंक स्थान यानी हानि के अलग अलग स्थान, यानी इतने अलग अलग प्रकार के कांडक हो सकते हैं। कांडक घात, अनुभाग,
हाँ, तो कांडक, अलग अलग टाइप के
कांडक, अनुभाग कांडक की बात है। हाँ, अनुभाग कांडक का आयाम
अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण अलग
अलग हो गए, वेरिएशन हो गए, तब तक उसको हम अनंत भाग हानि ही कहेंगे। हाँ, तब तक उसको असंख्यात भाग हानि नहीं कहेंगे। यहाँ हानि का प्रकरण है, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर गए और यही पश्चातानुकूल है। हम ऊपर से उत्कृष्ट अनुभाग से हम देख रहे हैं। पहले में छोटा अनुभाग कांडक बताया, वो कांडक का प्रमाण बढ़ाते गए, फिर भी उसको भी एक समय बढ़ाया, दो एक समय नहीं, यहाँ पर एक एक स्पर्धक हम नीचे आते रहे, फिर भी उसको क्या कहेंगे हम, अनंत व भाग ही कहेंगे। और इसी को यहाँ पश्चातानुकूल भी कहा। यहाँ इतना विशेष समझना, यहाँ पर अनंत भाग हानि में जो अनंत अनुभाग कांडक का प्रमाण कहा है, सो वह अंतिम उर्वंक प्रमाण भी हो सकता है, चरम और द्विचरम उर्वंक प्रमाण भी हो सकता है, चरम द्विचरम और त्रिचरम उर्वंक प्रमाण भी हो सकता है। ये सब क्या है, अनंत भाग हानि वाले ही स्थान है। इस प्रकार उत्तरोत्तर अनुभाग कांडक के प्रमाण में वृद्धि करते हुए वह आवली के असंख्यातवे भाग के बराबर चरमादि उद्रुवंक प्रमाण भी हो सकता है, यानी जो उर्वंक का स्थान है उतने स्थान नीचे आ सकते हैं। अभी इसको हम कल फिर से दोबारा विशेषार्थ से देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी न सकनो सदा देखहु।
नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोहे तपोत्सावनम। नमोरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोहे तपोत्सावनम। नमोरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो